Recording.
جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم نے آخری دفعہ آخری کلاس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. کوئی اس کی وجہ ہمیں یاد دلا سکتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے کیوں پڑھنا شروع کیا تھا؟ پہلے فرحان بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شام میں جانشین بنے تھے، اور ان کا ایک بہت ہی خصوصی تعلق تھا ان کے ساتھ. آپ کچھ اور بتا رہے تھے، یہی بتا رہے تھے. آپ ساتھ بھائی کچھ اور بتا رہے تھے، یہی بتا رہے تھے. تو ان کا بہت خصوصی تعلق تھا، چونکہ عشرہ مبشرہ سیریز کے جو آخری صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح تھا ان کے ساتھ، تو پھر ایک لوجیکل پروگریشن میں کے طور پر جو ہے نا، یا سکسیشن کے طور پر ان کا ذکر ہم نے شروع کر دیا تھا. تو ان کے بارے میں ہم نے کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں کری تھیں. ان میں سے ایک بات جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ریلیونٹ تھی، وہ کون بتائے گا؟ ان کے بارے میں جو باتیں کری تھیں ان میں سے کون سی بات تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ریلیونٹ تھی، یعنی بہت تعلق تھا آپ لوگوں کے ساتھ اس والی بات کا، وہ کیا؟ چلیں عبداللہ بھائی سے پوچھتے. بہت ینگ تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی ایج کے ہی تھے، ٹھیک ہے، یا تھوڑے سے چندوں کے مقابلے میں تھوڑے سے بڑے تھے، یا چندوں کے مقابلے میں تھوڑے سے چھوٹے تھے، اور چندوں کے بالکل برابر کے تھے، ٹھیک ہے. یعنی جب مسلمان ہوئے تو 16-17 سال ان کی عمر تھی. جب غزوہ بدر میں شامل ہوئے تو 20 سال ان کی عمر تھی، آپ میں سے بھی اکثر کی 20 سال کی بھی عمر ہے. اور جب یمن کا ان کو نبی علیہ السلام نے والی بنایا، یعنی اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کر کے یمن روانہ کیا، تو اس وقت کتنی عمر تھی؟ جو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر ہی 27 تو نہیں، شاید 28-29 ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے کتنے سالوں کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، اور یہ وفات سے ہی تھوڑا کچھ عرصہ پہلے یمن بھیجے گئے تھے. تو اس حساب سے 28 اراؤنڈ ایئر کی عمر بنتی تھی، ٹھیک ہے. تو انتہائی کم عمر نا، 28 ایئرس. تو یعنی آپ میں سے جو سینئر موسٹ چلے ان کی عمر 28 اب اس سے قریب ہے. اور اتنا بڑا عہدہ کہ یمن تو اسلامی علاقوں میں سب سے امپورٹنٹ علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے نا، جیسے حجاز ایک میجر ترین علاقہ ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف، ان کو ملا کر کے حجاز بنتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یمن از اے ویری ویری امپورٹنٹ پلیس، ٹھیک ہے. شام اسی طریقے سے بہت امپورٹنٹ ترین جگہ ہے. تو اس کا ان کو والی بنا کے نبی علیہ السلام نے، والی یعنی ذمہ دار بنا کر کے، رسپانسبل بنا کر کے بھیجا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں کر کر کے ہم نے آخری بات جو ان کے بارے میں کری تھی وہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، نبی علیہ السلام کے تو انتقال کے بعد یہ واپس آئے نا یمن سے، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. تو انہوں نے امیر المؤمنین خلیفت الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں شام کے محاذ پہ جانا چاہتا ہوں لڑنے کے لیے نا، کیونکہ ساری فوجیں اس وقت وہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ وہیں پر تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، تو انہوں نے نا ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نہ ان کو وہاں نہ بھیجیں، ان کی زیادہ ضرورت مدینہ منورہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ رہ کر کے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. کیوں انہوں نے کہا ہوگا؟ انہوں نے اسی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام نے عالم بالحلال والحرام فرمایا تھا کہ حلال اور حرام سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے. یہ ہم کو تو مدینہ منورہ سینٹر ہے نا اسلامی ریاست کا، اسلامی जो जितनी सारी एस्टैब्लिशमेंट थी उसका दारुल खिलाफा मदीना मुनव्वरा था। तो अब लोग जो है वो इल्म सीखने के लिए मदीना मुनव्वरा आएंगे, तो यहां पर ऐसे लोग मौजूद होंगे तो वो उनको इल्म सिखाएंगे, हलाल हराम का इल्म सिखाएंगे, ठीक है। तो उमर हजरत अनहों ने ये एडवाइस दी, ठीक है, अबू बकर सिद्दीक को। अब इस एडवाइस के बारे में कुछ अगर आपको हम इधर बिठा दें, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, इससे हमें क्या सबक मिलता है, ये असबाक आप बताएं, समझें कि गोया के आप टीचर हैं, इससे हमें क्या लेसन मिलता है। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक को ये एडवाइस दी, किसी और से पूछ, हम इससे क्या फायदा हासिल कर सकते हैं इस वाक्य को पढ़ करके, या आगे बढ़ जाएं। जी साहब भाई, बड़े को मशवरा दे सकते हैं, ठीक है, छोटे ही उल्टी, उन्होंने बड़े को मशवरा दिया ना, तो फिर इसका यही होना चाहिए कि अपने से बड़े को मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो पॉलिटिकली भी ही वॉज द लीडर, उमर फारूक रतान वॉज नॉट द लीडर, ठीक है ना, और स्पिरिचुअली भी देखा जाए, रिलीजियसली भी देखा जाए, इल्म के एतबार से भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक के एतबार से भी देखा जाए, हर एतबार से अबू बकर सिद्दीक रतान वॉज वे अबव उमर फारूक रतान, ठीक है। उमर फारूक रतान ने क्या फरमाया था कि आप मेरी पूरी जिंदगी के नेक अमाल ले लें, और सिर्फ जो है ना वो आपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो एक रात गुजारी थी गारे सौर में, उस रात के अमाल मुझे दे देना, तो मैं फिर भी ज्यादा बेहतर।
वो
सही है, तो जिंदगी माशाअल्लाह अल्लाह ने एक से एक दीवारें बनाई। अच्छा, तो यानी इतना बड़ा मुकाम था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हर लिहाज से, ठीक है, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका ख्याल नहीं किया कि भाई वो इतने बड़े हैं तो उनको तो सब कुछ खुद ही से पता चल जाएगा, है ना, मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है, उनको सब कुछ खुद ही से पता चल जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने दो चीजों का ख्याल रखते हुए उनको मशवरा दिया। वो दो चीजें कौन सी होती है जिनका ख्याल रखते हुए अपने बड़े को आप मशवरा दे सकते हैं, दो प्री रिक्विजिट्स। जी जीशान, अदब, अदब, ठीक है, और दूसरा इतशाम, हाँ, इल्म का ख्याल रखते हुए, नहीं वो बाप से इल्म में बहुत बड़े हैं, इसी वजह से तो बड़े हैं, सबसे ज्यादा बड़ा तो इल्म वाला ही बड़ा होता है ना, तो फिर वो इल्म का ख्याल रखते हुए है, एहतराम, अदब एहतराम तो एक ही चीज। जी रहान भाई,
नहीं।
एग्जैक्टली, ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया, इखलास से नीयत होनी चाहिए, ठीक है, नीयत का इखलास कि मैं ये जो कर रहा हूं ये मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं और मुसलमानों की खैरख्वाही के लिए कर रहा हूं, ये दो नीयत है, ठीक है ना, ये कंडीशन है, वैसे तो हर काम के लिए ये कंडीशन है, लेकिन स्पेशली यहां पर बड़े को मशवरा देने की बात हो रही है, तो इसमें इखलास शर्त हो, बड़े को तकलीफ पहुंचाना ये बिल्कुल भी नियत नहीं होनी चाहिए कि चलो मैं इनको जरा छेड़ता हूं, ठीक है, या ये कि मैं दिखाता हूं कि देखो मैं भी कितना बड़ा हूं, वो तो मैं बन नहीं सका लेकिन हूं मैं बड़ा, आपने जबरदस्ती अपने आप को बड़ा बना दिया लेकिन मैं भी बड़ा हूं बहुत, ठीक है, ये होता है ना झाड़ना, अपनी अपनी इल्मियत झाड़ना, ठीक है, अपना भी इंपॉर्टेंस को दिखाना, ये भी तो हो सकता है ना किसी की नियत, ठीक है, नहीं ये इखलास नहीं होगा, ठीक है, तो इखलास और दूसरा अदब एहतराम, ठीक है, तो इन दोनों के चीजों के साथ फिर आप मशवरा दे सकते हैं, जो आपके दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली है आप उससे मशवरा दे सकते हैं, ठीक है ना, डोंट एज्यूम कि बड़े के ऊपर जो है ना वो सारे उलूम वारिद हो रहे हैं और सब कुछ उनको पता है, आलिमुल गैब बन गया ना नऊज़ुबिल्लाह हमारा बड़ा, नहीं, अल्लाह आलिमुल गैब है, कोई भी बड़ा दूसरा आलिमुल गैब नहीं, ठीक है, लेकिन अदब और इखलास के साथ हम मशवरा दें, ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। अच्छा, अब मशवरा मिलके एक और बड़ा पॉइंट, कि अबू बकर सिद्दीक रहता उन्होंने डांट के चुप तो नहीं करा दिया उनको, चुप जाओ उमर, तुम्हें क्या पता, तुम मुझे मशवरा देते हो, तुमने गुजारी थी 3 रातें नबी अलैहिस्सलाम के साथ, मैंने गुजारी थी, इस तरह की कोई बात नहीं करी थी, ठीक है, बल्कि सुन लिया उस मशवरे को, तो बड़ा जो है वो मशवरे को सुन ले, ये बड़े के करने का काम है। अच्छा, तीसरा सबक, आप लोगों के साथ ही पहले भी बातें हो चुकी हैं वैसे, तीसरा सबक, अच्छा हम ऑनलाइन तो देख ही नहीं रहे क्या लिखा हुआ है, ये चश्मा भी अजीब, क्या छोटों से मशवरा करने से गुरूर नहीं होता? हाँ लेकिन हम तो उम्र, ठीक है बिल्कुल सही है, जो छोटों से मशवरा करता है तो ये उसके गुरूर को भी जो है ना वो कंट्रोल में रखता है, बहुत अच्छी बात है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा लेते थे, ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा और एक और तीसरा क्या लेसन मिलता है मैसेज ये पान रहे, ठीक
अच्छा
है बिल्कुल सही कहा, ठीक है बिल्कुल यही बात मेरे जहन में भी थी कि बड़े की अब मर्जी है, मर्जी से मुराद बड़े की अब ऊपर है कि भाई वो उस मशवरे को कबूल करे या ना करे, ठीक है कोई वाजिब नहीं है उसके ऊपर मशवरा कबूल करना, अल्लाह का हुक्म अगर होता तो फिर तो वाजिब होता ना कबूल करना कि भाई उन्होंने अल्लाह का हुक्म याद दिला दिया आपको, तो अब तो आपको कबूल करना फर्ज है, लाजिम है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना, लेकिन मशवरा जो है वो कबूल करना कोई फर्ज और वाजिब बड़े के ऊपर नहीं होता। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, मशवरा कबूल नहीं किया, ठीक है ना कबूल नहीं किया, और फरमाया कि नहीं इन्होंने तय कर लिया है कि इनको जाना है तो इस वजह से जो है ना वो मैं इनको रोकूंगा नहीं, जाने दिया इनको, ठीक है तो ये जो है फिर शाम चले गए, ठीक है। अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके आगे हम बढ़ते हैं कि आगे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहु ने अपनी किताब तस्किरे के अंदर, ये किताब का लफ्ज बार बार नाम भी बार बार इसी जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमने आपको मशवरा दिया है कि भाई तस्किरे एक अच्छी किताब है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए, तो रिमाइंडर के तौर पे आपके सामने तस्करे किताब का ये किताब है, ये इंडिया की पब्लिश है बाय द वे, ठीक है तो इंडिया में भी पब्लिश होती है किताबें, तो इंडिया से ही मंगवा सकते हैं, आप पाकिस्तान की पब्लिशिंग थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल में आपको मिल जाएगी, तस्करे नाम है इस किताब का। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी मददुल्लुहुम ने फरमाया कि चुनाचे हजरत मुआज शाम चले आए, यहाँ आपने जिहाद में भी हिस्सा लिया और फिर अगली बात बड़ी मजे की है, और वहां पे रह के तालीम और तबलीग का सिलसिला भी जारी रखा, ठीक है तो अब जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत नजर आती है कि उन्होंने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे को कबूल नहीं किया, इनको शाम भेज दिया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु समझ रहे थे शायद वो ये समझ रहे होंगे शाम में जाके खाली लड़ाई वड़ाई करेंगे और पढ़ाई वढ़ाई का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बसीरत थी जो कि असल में अल्लाह ताला की तरफ से उनको अल्लाह ने गाइड किया, क्योंकि वो बड़ा होता है ना जो अमीर होता है ना अमीर, उसके ऊपर अल्लाह की रहमत बराह रास्त उतरती है, ठीक है हत्ता कि इवन नबी रसूल ने फरमाया कि जब नमाज जमात की हो रही होती है तो जो इमाम होता है ना इमाम नमाज की जमात का, तो अल्लाह की जो रहमतें नाजिल हो रही होती हैं वो सबसे पहले इमाम पर नाजिल होती है, ठीक है फिर इमाम से वो पीछे आती हैं जो इमाम के पीछे खड़ा होता है जो कि कौन होना चाहिए मुअज्जिन या इकामत देने वाला, वो फिर उस पर आती हैं, ठीक है फिर वहां से वो फिर ऐसे मूव होती हैं और ऐसे मूव होती हैं, और फरमाया जैसे परिंदा अपना पर खोलता है ना तो वो ऐसे खोलता है फिर वो ऐसे खोलता है, ठीक है तो वो रहमतें फिर इधर भी जाती हैं और वो इधर भी जाती हैं, ठीक है तो लेकिन शुरू कहाँ से होती है, इमाम से शुरू होती है, फिर सेकेंड टू इमाम यानी जो नायब इमाम होता है, क्यों क्यों नायब इमाम, इसलिए कि खुदा ना खास्ता इमाम का वजू टूट गया तो क्या होगा कि इमाम साहब जो है ना वो यूं करेंगे पीछे से पकड़ेंगे इसको यूं आगे खींच लेंगे और खुद चले जाएंगे वजू बनाने के लिए, ठीक है तो नायब इमाम कौन हुआ जो पीछे खड़ा हुआ होगा, इसी वजह से मौजिन ये जो मुख्त जो वो होता है ना सबसे नेक्स्ट सीनियर उसको बिल्कुल पीछे खड़े होना चाहिए आइडियली स्पीकर, ठीक है तो ये सिलसिला है। तो अब अबू बकर सिद्दीक रतान के ऊपर अल्लाह ताला ने ये चीज खोली कि भाई भेज दो इनको अल्लाह खैर करेगा मैं खैर करूंगा, ठीक है हुआ ये कि जब वहां पे गए तो वहां पे नए लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और वो ज्यादा करीब था नए लोगों के लिए शाम का इलाका, अब वो जो आते थे ना तो ये उनको पढ़ाना शुरू हो गए, वहां पर ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे चिल करने के लिए आया हूँ, या तो मैं तलवार के जौहर दिखाने आया हूँ, मैं इधर पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं करूंगा। भाई जिधर बैठे उधर तेरा फसाना छेड़ देते हैं, हमारे अजीर अब्दुल्ला फरमाते थे जिधर बैठे उधर तेरा फसाना छेड़ देते हैं, यानी उधर ही पढ़ना पढ़ाना अल्लाह की बातें शुरू कर देते हैं। इसके लिए कोई हमें मदरसे की इमारत नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे वो दारुल उलूम देवबंद का आपने सुना होगा ना, कि दारुल उलूम देवबंद कैसे शुरू हुआ था, अनार के दरख्त के नीचे महमूद और महमूद दोनों बैठे और दारुल उलूम देवबंद शुरू हो गया। ये कहना कि नहीं जी पहले इमारत बनेगी फिर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, पहले टेबल चेयर आएगी फिर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, पहले मुझे लैपटॉप मिलेगा फिर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, ये बेवकूफ लोगों की बातें होती हैं। अकलमंद ऐसे काम नहीं करते, जो मिला है बस उसी के साथ शुरू कर दिया, ठीक है? तो मोहसिन बिन जबल अतान जो है इन्होंने वहीं पे तालीम और तबलीग का सिलसिला जारी रखा और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के राइट हैंड मैन भी बन गए, ठीक है? दस्ते रास्त इनको सपोर्ट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट वही बन गए, ठीक है? तो ये कितनी बेहतरीन हमारे सामने है ना, कि हमें भी अपने बड़ों के साथ ऐसे ही करना चाहिए ना कि उनके दस्ते रास्त बने, उनके हेल्पर बने। इसको एक अंग्रेजी में साजिद ने एक बात कही थी इसके बारे में, कौन बताएगा कि बड़ों के हमें क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, क्या हमारा मामला होना चाहिए अपने बड़ों के साथ? बच्चे बता दें ज्यादा अच्छा है, ऑनलाइन बताएं तो और भी अच्छा है। ठीक
सोल्यूशन
हाँ माशाल्लाह, ठीक है, रेहान भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हम ना पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बने, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बने रहे हर वक्त, ठीक है? तो भाई हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बने रहेंगे तो फिर वो हमारे साथ ही हर वक्त एंगेज रहेंगे, फिर बेचारे वो आगे कोई नदी काम नहीं कर सकेंगे। पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बने ना आप, ठीक है? जो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनता है फिर उसी को, फिर वो सऊद भाई कितनी अच्छी बात कर रहे थे, सोल्यूशन बेचना, ठीक है? तो सोल्यूशन कौन बेचेगा, जो जो खुद सोल्यूशन को पहले समझेगा उसको अप्लाई करेगा तो वही बेच सकता है ना सोल्यूशन को, वरना तो फिर वो प्रॉब्लम बेचेगा, राइट? जो खुद प्रॉब्लम बना रहेगा वो अगले बंदे को भी प्रॉब्लम ही बेचेगा ना फिर उसके बाद, क्योंकि सोल्यूशन तो उसके पास है नहीं या वो समझता नहीं है सोल्यूशन को, ठीक है? शैतान यही काम करता है। शैतान क्या करता है, ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो ही सेल्स प्रॉब्लम्स टू द बनी आदम, राइट? वो प्रॉब्लम सेल करता है, इसी वजह से वो शैतान है। और जो उसके रास्ते पे चल करके प्रॉब्लम सेल करता है, ठीक है, दूसरों को भी गुनाह में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, वो फिर किसके साथ उसकी निस्बत बनी, कौन बताएगा? साथ भाई बताएंगे, जने इतना मुश्किल सवाल के जवाब आपने। उसकी निस्बत उसका कनेक्शन किसके साथ बना, शैतान के साथ। तो शैतान हजरते शैतान किधर लैंड होंगे जाकर के, जन्नत में, हजरते शैतान ने जहन्नम में जाके लैंड होना है, तो उनके साथ जितने उनके निस्बत वाले होंगे ना, साहिब निस्बत, सही है, साहिब निस्बत शैतान उनके साथ साथ, जहां वो लैंड होंगे वो भी सारे के सारे वहीं पे जाके लैंड होंगे, ठीक है ना? अब चॉइस इज आवर्स, चॉइस इज आवर्स, ठीक है? तो हमें पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनना है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना है। बहुत आसान है ये दीन, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये दीन, लेकिन मुश्किल उसके लिए जो ना मानने का कसम खा ले, नहीं मैंने नहीं माननी, ठीक है? अल अखिल्लाउ यौम इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकून, ठीक है? वो तो दुश्मन बन जाएंगे ना सारे दोस्त, जो दोस्ती की खातिर गुनाह में इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो तो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, ठीक है? वो तो सिर्फ वो दोस्त होंगे जो कि एक दूसरे को गुनाह से रोकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की मदद करते हैं नेकी के ऊपर। वो दोस्त वाकई हैं, अभी भी वही असल में दोस्त हैं और वही बाद में भी दोस्त रहेंगे, ठीक है? तो कल जैसे बात हो रही थी कि कुरान झूठ बोल रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्या कहते, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, हम अभी भी दोस्त हैं, हम जहन्नुम में भी दोस्त ही रहेंगे, जहन्नुम में दोस्ती नहीं चलेगी वहां पे, ठीक है? अल्लाह ताला से फौरन हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अबू उबैदा बिन जर्रा शैतान ये ना ये दस्ते रास्त बने रहे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत ताल्लुक था, यानी बहुत मोहब्बत थी मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से, कोई के छोटे भाई से जिस तरह से मोहब्बत होती है ऐसी मोहब्बत थी ना उनको। तो फरमाया करते थे अजज़त निसाउ अई यलिदना मिसल मआस। ठीक है कि औरतें जो है ना वो आजिज आ गई। आजिज आने का मतलब क्या होता है? आजिज का लफ्ज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका मतलब हमें नहीं बताओ क्या मतलब। फ्रस्ट्रेट हो गई? नहीं, फ्रस्ट्रेट तो आजिज के नतीजे में होता है, आजिज इटसेल्फ का मतलब फ्रस्ट्रेट होना नहीं होता।
वैसे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे पिवट कर दिया है अपने बी पर।
ठीक है, आजिज का मतलब होता है जो हार गया, समवन हु फेल्ड। ठीक है, जब भी हजरत जी अपने आप को आजिज कहते थे ना, मैं आजिज, मैं फकीर के भाई, मैं तो फेल हो गया जी।
अपने आप को सबमिट करते
अल्लाह के सामने सबमिट करने के लिए मशायख कहते हैं कि भाई मैं तो आजिज आ गया हूँ, मैं तो आजिज हूँ, मैं हार चुका हूँ, ऐ अल्लाह बस आप ही मेरी मदद कर दीजिए। इस तरीके से अल्लाह के सामने सबमिट करने के अंदाज होते हैं, इसी वजह से हज़रत जी और दूसरे मशायख जो है वो आजिज कहते हैं, फकीर कहते हैं अपने आप को, मेरे पास से कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर। ठीक है, तो हार गया, हार गई, औरतें हार गई कि वो मुआज जैसा कोई पैदा कर सके दुनिया के अंदर। ठीक है, यानी दे गिव अप जैसे उनका, दे गिव अप यानी एक मुहावरा है ये बेसिकली। ठीक है, ऐसे नहीं है कि औरतें जो है वो वाकई हार गई वगैरह, मतलब ये कि जैसा मुआज की वालदा ने मुआज को तरबियत दी, ठीक है, वैसी तरबियत जो है ना वो कोई और अपनी औलाद को दे नहीं सका फिर उसके बाद, दे फेल्ड इन दैट। ठीक है, अच्छा ये कॉल जो है वो मौजतान के बारे में भी मशहूर है, और ये एक हजरत खालिद बिन वलीद रतान के बारे में मशहूर है के अंत तलित यलितना खालिद मिसला खालिद। ठीक है, तो आपके एक बड़े भाई होते हैं जो आजकल पाकिस्तान गए हुए हैं, अशल भाई। ठीक है, तो उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा आर्टिकल, क्या हो गया भाई? तो उन्होंने जो है ना वो एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था जो कि हमने आपके साथ शेयर भी किया था लेकिन शायद सबने पढ़ा ना हो, अबाउट रोल ऑफ वेमेन ना इन नेशन बिल्डिंग। तो जब मैंने ये पढ़ा इस किताब के अंदर तो मुझे याद आ गया कि उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर भी यही वाला कॉल नकल किया था। ठीक है, कि अजद निसाउ यलिदना मिथला मास। ठीक है, लेकिन उनके आर्टिकल में गलती है जो कि अगर वो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे तो उसको ठीक कर लें, उन्होंने तलिदना का लफ्ज इस्तेमाल किया था, उसको यलिदना कर लें, वो सर्फ काम आती है इसके अंदर। क्या गर्दान चलती है बताएं, सर्फ वाले गर्दान क्या चलेगी इसके अंदर? वलदा यलिदु, सर्व सगीर तो हमने आपको बता दी, वलद यलिदु।
बिल्कुल
देखिए ये सर्व सगीर है लेकिन कबीर की गर्दान चलाए। ठीक हाँ, यलिदु यलिदाने यलिदूना, तलिदु तलिदाने यलिदना, तलिदना नहीं यलिदना। ठीक है, फिर तलिदु तलिदाने तलिदूना, तलिदीना तलिदाने तलिदना, अलिदु नलिदु। ठीक है, तो ये सर्व कबीर की गर्दान बनेगी। तो इस एतबार से ना जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यलिदना मिसला हादा मिसला माज, यलिदना का लफ्ज होगा जो कि जमा मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल हो। उनसे गलती एक हो गई है, मैंने भी उसकी इसलाह नहीं करी, जब मैंने काफी सी चीज़ों की इसलाह करी थी लेकिन इसकी मैंने इसलाह नहीं करी, तो मेरी अपनी गलती, उन्होंने तलिदना लिख दिया था अपने आर्टिकल में। बहरहाल, तो उमर अतान ने इनके बारे में ये बहुत जबरदस्त एक बात करी थी कि भाई इतना जबरदस्त बंदा है मुआज कि आप दुनिया में ऐसे बंदे नहीं पैदा हो सकते, ऐसा कोई है कानून का। अच्छा आगे फरमाते हैं हजरत मुफ्ती उस्मानी दामत बरकातुहुम के, एक मरतबा हजरत उमर रजील तआला अन्हु ने अपने एक गुलाम को 400 दीनार दे करके कहा कि ये अबू उबैदा रजील तआला अन्हु के पास लेके जाओ। अच्छा ये वाकया हम पढ़ चुके हैं जब हमने अबू उबैदा रजील तआला अन्हु का वाकया पढ़ा था ना, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं, कि ये 400 दीनार ना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लेके जाओ और उनको दे दो और थोड़ी देर रुक करके देखो कि वो करते क्या है। ठीक है, तो ये गुलाम जो था वो गया और दे करके ठहर के देखने लगा, तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने फिर अपने गुलाम को बुलाया और उससे कहा कि नहीं, पहले तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआएं दी कि अल्लाह ताला उनको उसका बेहतरीन अजर दे, उन पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, फिर ना अपनी कनीज से कहा कि ये 7 दीनार फलाने को जाकर के दे आओ, ये 5 दीनार फलाने को जाकर के दे आओ, ये फलाने को जाकर के दे आओ। ठीक है, बांटते रहे हत्ता के 400 जीरो हो गए, खत्म हो गए सारे के सारे। ठीक है, अच्छा अब ये गुलाम जो है वो वापस आया। अच्छा, गुलाम और कनीज के तफसीलात हैं, इनका पर्दा अल्लाह ताला ने डिफरेंट रखा है। ठीक है, जो एक आजाद औरत का पर्दा होता है ना, वो डिफरेंट होता है, तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसको पर्दा करना है गैर महरम से। लेकिन कनीज जो है ना, जो कि काफिरों के साथ जंग के नतीजे में फिर वो जो कैप्चर किए जाते हैं, तो उनको इनकार्सरेशन क्या कहते हैं, प्रिजन वगैरह में डंप कर देने की बजाय इस्लाम का क्या तरीका था कि घरों के अंदर कनीज के तौर पर उनको रखा जाता था, जिसके बाद फिर बहुत फायदे होते थे। एक तो वो प्रिजन को मेंटेन नहीं करना पड़ता था, जैसा कि आजकल ये लोग मेंटेन करते हैं ना अपने प्रिजन को, जिसके अंदर मुजरिम को पकड़ के प्रिजन में डालते हैं, तो प्रिजन वो उससे बड़ा मुजरिम बन करके फिर वहां से बाहर निकलते हैं प्रिजन से। ठीक है, और प्रिजन में जितना वायलेंस होता है, और जितना कत्ल होता है, और जितनी ड्रग्स होती हैं, और जितना गंदी गंदी चीजें होती हैं, यू कैन इमेजिन अमेरिका के प्रिजन्स, और फिर उसका खर्चा हुकूमत के ऊपर जो है वो मिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा जो है हुकूमत के ऊपर आता है वो प्रिजन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस्लाम ने इस तरीके को पसंद नहीं किया। प्रिजन्स होते हैं, वो भी यूज होते हैं, उनका मीनिंग है, बिल्कुल प्रिजन्स नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस जिसको पकड़ा हजारों लोगों को पकड़ के प्रिजन में डाल दिया। तो वो फिर गुलाम और कनीज वाला सिलसिला था, फिर उससे फिर वो लोग मुसलमानों के अखलाक से मुतासर होकर के मुसलमान बन जाते थे, और दीनी उलूम में इतना आगे बढ़े कि अरबों को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, और एक दो जनरेशन के अंदर ये हाल हो गया था कि जो गुलाम आए थे ना, वो दीनी उलूम में अरबों के उस्ताद बन गए, और अरबों में जो है वो इल्म कम हो गया, इन नॉन मुस्लिम जो आए थे वो उनमें इतना बढ़ गया। तो ये इतना अच्छा सलूक मुसलमानों ने उनके साथ किया था, ये सब कुछ हुआ। तो बहरहाल, तो ये कनीज जो थी ना, ये वहां पे इस तरीके से कर रही, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझेगा कि ये लोग तो पर्दा नहीं करते थे आपस में। वो कनीज थी, कनीज का पर्दा डिफरेंट होता है, कम होता है, वो इस तरह से पर्दा नहीं होता जिस तरह से आम मुसलमान औरत का पर्दा हो। बहरहाल, तो अच्छा इसके बाद ना उमर ताना उन्होंने उस गुलाम से कहा क्या
कनीज
कनीज से पर्दा, हाँ मर्दों मर्दों को तो किसी से भी पर्दा नहीं करना होता मर्दों को अपनी आंखों की हिफाजत करनी होती है। ठीक है, तो वो देखिए ना औरतों से।
से
हाँ, कनीज का ये होगा कि उसको देखने से वो वाला मामला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहूद में अब सारे हिंद का जो हुक्म है ना कुरान मजीद के अंदर मर्दों को, तो हर ऐसी जगह पे जहां से कि आपको गुनाह का खदशा हो, आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें। ठीक है, तो पर्दे का जो हुक्म है ना, ये वो एक अलग हुक्म है, और निगाहों की हिफाजत का हुक्म अलग है। तो निगाहों की हिफाजत के हुक्म को आप ये नहीं कह सकते कि वो पर्दे का हुक्म है, मर्दों को पर्दे का हुक्म है, नहीं, वो मर्दों को पर्दे का हुक्म नहीं है, वो मर्दों को निगाहों की हिफाजत का हुक्म है, दिस इज सेपरेट। ठीक है, आप शायद इन दोनों बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो मर्दों को कौन से पर्दा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, मर्दों को पर्दे का कोई हुक्म नहीं। ठीक है, यानी पर्दे का मतलब क्या होता है, अपने आप को छुपाना। ठीक है, तो मर्दों को हुक्म नहीं है कि तुम अपने आप को छुपाओ, ये औरतों को हुक्म है कि अपने आप को छुपाओ। ठीक है, लेकिन आंख की हिफाजत, नजर की हिफाजत, ये हुक्म किस किस को है, सिर्फ मर्दों को है? नहीं, दोनों को है। ठीक है, यग़ुदना मिन अबसारिहिन्ना भी है, औरतों को भी अल्लाह का हुक्म है कि अपनी निगाहों को झुकाओ, मर्दों को भी। अच्छा, फिर उमर रताना उन्होंने ना फिर उसको कहा गुलाम को कि ये 400 दीनार लो, और अब मुआज बिन जबल के पास जाओ और देखो वहीं फिर रुक करके कि ये क्या करते हैं उसके साथ। अच्छा, अब पर्दे की बात भी आ रही है वैसे, तो मुआज बिन जबल रताना के पास गया, उनको दिया, तो मुआज बिन जबल रताना ने एग्जैक्टली वही काम किया। ठीक है, किसी को बुलाया, खादिम को नहीं है, जिसको भी बुलाया कहा ये इसको जा करके दे दो, ये इसको जा करके दे दो, इसको जा करके दे दो। ठीक है, अच्छा जब ये सब कर रहे थे, तो आखिर में जब थोड़े 2 दीनार रह गए ना, 2 दीनार लिटरली 400 में से, तो अंदर से आवाज आई, यानी इनकी जो बीवी थी आजाद मुसलमान औरत, वो पर्दे में थी, वो नहीं सामने आकर के डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, वो पर्दे में थी, वो पीछे से उन्होंने इनको आवाज दी, हम भी तो नादार गरीब हैं, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मुआज अदान के पास 2 दीनार रह गए थे, वो उन्होंने उधर रोल कर दिए, अंदर लुढ़का दिए जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वाली बात भी पूरी होगी, फिर वो तो पर्दे में ही थी। अच्छा, जब उसने आकर के ना उमर अजान को बताया कि उन्होंने भी एग्जैक्टली यही किया, इन्होंने भी एग्जैक्टली यही किया, तो उमर अजान ने जवाब दिया, खुश होकर फरमाया कि ये आपस में भाई भाई हैं और एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे हैं ये, हालांकि वो कुरैशी थे, मक्का मुकरमा से आए थे, ये अंसारी थे, ये उम्र में भी बहुत कम थे, लेकिन अल्लाह ताला इस तरीके से ना मोहब्बतें पैदा कर देते हैं कि ये फिर फर्क खत्म हो जाता है। मुझे याद है बहुत पहले हमारे मुल्क के बराबर में जो मुल्क था, मुल्क है अभी भी है, ठीक है, तो वहां पे जब बहुत सही मानों के नेक लोग जब आए थे ना, ठीक है, तो उस जमाने में फिर पूरी दुनिया से जो है ना वो नेक मुसलमान उस मुल्क में पहुंचे थे। तो एक नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट जो था, उसने शायद बीबीसी में या सीएनएन में कोई लिखा था उस मुल्क के हालात को देख करके ना, कि मैं वहां गया, मैंने इन लोगों के साथ वक्त गुजारा, मैंने उनको देखा, तो लिखता है उसके अंदर, मैंने खुद पढ़ा था ना इसको, लिखता है कि मुझे एक बात की बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पर जो है ना वो कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, कोई रूस से आया हुआ है, कोई अफ्रीका से आया हुआ है, कोई सऊदी अरब से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई यूरोप से आया हुआ है, हर जगह से लोग आए हुए, लेकिन सारे के सारे एक जैसे लगते हैं। वो उठते भी एक तरीके से हैं, वो बैठते भी एक तरीके से हैं, वो खाना भी एक तरीके से खाते हैं, वो कपड़े भी तरीके पर एक ही तरीके के पहनते हैं, वो बातचीत भी एक दूसरे के साथ एक ही तरीके से, जुबानें तो डिफरेंट हैं लेकिन अंदाज बातचीत करने का और अखलाक और सब एक जैसे हैं। ये हैरत, वो बंदा लिटरली हुई वो सरप्राइज, ठीक है, और मैं शायद क्लास में पहले भी एक दफे बता चुका हूँ आप लोगों की बात। तो वो मैंने जब उसको पढ़ा ना, तो अलहमदुल्ला उस वक्त तक हम थोड़े बन चुके थे, उसी के साथ अलग अलग हो चुका था, तो समझ में आ गई बात कि ये इतना सरप्राइज जो हो रहा है ना, हमारे लिए तो कोई नई बात है नहीं, क्योंकि हम भी जब हजरी के साथ होते हैं तो सारे एक जैसे होते हैं, एक ही जैसे कपड़े, एक ही जैसे अखलाक, एक ही जैसे बातचीत, एक ही जैसे सब कुछ, एक जैसा हो जाता है ना। इज्तिमा में गए जो तो लोग जाते हैं वो देखते हैं कि सारे एक जैसे लगते हैं, तो ये सुन्नत की बरकत होती है ना, क्योंकि सुन्नत तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की एक है ना, चाहे आप जहां से भी ताल्लुक रखते हो, तो जो सुन्नत पे अमल करते हैं ना, तो फिर वो इस तरीके से एक जैसा हो जाता है। तो इनके बारे में भी फरमाया कि ये और ज्यादा ही एक जैसे हो गए थे, हजरत मुआज़ बिन जबल था और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा, आगे फरमाया हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बकातुहुम ने कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन जब ताऊन में मुब्तला हो, ठीक है, वो प्लेग जो आप लोगों से अबू उबैदा के वाक़े के आखिर में, क्या नाम था इसका, किसी को याद है? इस प्लेग का एक नाम पड़ गया था और फिर ये आज तक किताबों के अंदर उसी नाम के साथ याद है। एक तो प्लेग थी जिसको के जो यूरोप में फूटी थी,
डार्क
है डार्क डेथ,
डेथ
ब्लैक डेथ, हाँ उसका नाम ब्लैक डेथ पड़ा था, और उस प्लेग में जितने लोग मरे थे ना, इस वाले प्लेग के अंदर उसका शायद 10% भी या 5% भी नहीं मरे थे इस वाले प्लेग के अंदर। उसमें तो मिलियंस ऑफ देम, लिटरली पूरा यूरोप का कॉन्टिनेंट है ना, बेशक छोटा कॉन्टिनेंट है लेकिन है तो कॉन्टिनेंट, कितने मुल्क हैं उसके अंदर, उसकी आधी पॉपुलेशन मर गई थी उस प्लेग के अंदर, आधी पॉपुलेशन मर गई थी पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट, ठीक है, गंदगी के साथ रहते थे वो लोग, तो ये एक मेजर रीजन बना था, ठीक है। तो क्योंकि आपसे बताया ना पिछली क्लास में, आरिफ अंकल क्लास में, कि कितना पाकीजा रहते थे ये यूरोपियंस, ठीक है, जब इन्होंने दीन को छोड़ दिया, इस्लाम कबूल नहीं किया, तो फिर वो जो ईसाइत यानी ईसा अलैहि सलाम से जो पाकी इनको मिली थी वो भी उन्होंने छोड़ दी, ठीक है, और गंदे गलीज रहते थे, और रोडेंट्स, बेसिकली प्लेग जो है ना वो फैलता कैसे है, रोडेंट्स से फैलते, रोडेंट्स कहते हैं ये चूहे या चूहे की किस्म की जो मखलूक होते हैं, चुचुंदर, चूहा, कॉकरोच, तो ये जो है ना इनके साथ प्लेग के जरासीम लग जाते हैं, और ये फिर जहां जहां जाते हैं फिर वहां वहां ये प्लेग फैलती है, ठीक है। मुसलमानों में ये प्लेग कैसे फैली, तो इसका किताबों में लिखा हुआ है कि ये इस तरह से फैली थी कि एक तो आपको बताया था ना कि उसी जमाने में 18 हिजरी में ही, जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु वहां के अमीर बने थे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे टेक ओवर किया था ना उन्होंने, ठीक है, तो वो अमीर बने थे, तो उस वक्त जो है वो मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ा था, ठीक है, तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4,000 ऊंटों के ऊपर गल्ला लाद करके मदीना मुनव्वरा भेजा, ठीक है, लेकिन फिर एक कहत जो है वो वहां पर भी पड़ा, शाम में भी, ठीक है, वहां पे भी कुछ इलाकों में ना खाने पीना जरा कम हो गया या इस तरह का कुछ हुआ था, तो उसके लिए फिर भी ना बहुत सारा जो है वो गल्ला इस जगह पर आया, शाम के इलाके में आया, ठीक है। अब ये गल्ला जब आया लोगों को खिलाने के लिए, तो अब इसको जब स्टॉक पाइल किया गया ना, तो स्टॉक पाइल करने से ये फिर जाहिर है बहुत ज्यादा माशाल्लाह मुसलमान खूब देते हैं, है ना, जब दूसरे मुसलमानों की जरूरत पड़ती है तो दिल खोल के खर्च करते हैं। इतना गल्ला आ गया, इतना गल्ला आ गया कि उसको स्टॉक पाइल करके रखा गया, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना ये चूहे आ गए, क्योंकि खाने के लिए अब उनको तो खाना मिल गया, भाई बैठे बैठाएगा। अब वो जो चूहे आ गए ना, तो वो खा खा करके और फैलना शुरू हो गए। तो उन चूहों की वजह से, फिर गंदगी की वजह से नहीं बल्कि इस गल्ले की कसरत की वजह से, वो चूहे फिर ब्रीड करना शुरू हो गए। अच्छा, रैबिट भी उसी नस्ल की कोई चीज है लगता है, ठीक है, देखने में भी वो चूहा प्यारा सा चूहा लगता है, रैबिट जी। इस पिले का नाम तो आप लोगों ने बताना था, आपने बताया ही नहीं। अमवास, आइन सिन अमवास इसका नाम था, ठीक है, शायद उस जगह का नाम था जहां से ये शुरू हुई थी, शाम के अंदर। तो अमवास प्लेग जो है ना, फिर इसके अंदर ये जो है, अच्छा वो कह रहा था वो रैबिट जो है ना, वो भी इसी की नस्ल की चीज लगती है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन तो वो भी जो है ना, वो ऐसे ही जब मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं ना आपके रैबिट्स, तो वो इतना तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं कि फिर शिकायत हो जाती है किसको याद है जब हमारे छत के ऊपर रैबिट जो है वो इतनी तेजी से बड़े हो गए थे ना, तो फिर वो भागना शुरू हो गए इधर उधर बिल्डिंग के अंदर। बिलाकर किसी ने शिकायत कर दी कि यार ये क्या हमारी बिल्डिंग में आपने रैबिट्स रखे हुए। फिर हमने रैबिट जो है वो कुछ जो है वो किसी को दिए, कुछ किसी को दिए, कुछ जो है वो सऊद अंकल को दिए, कुछ उन्होंने पका के खाए, कुछ उन्होंने दूसरों को दे दिए, उन्होंने पका के खाए, ठीक है। तो वो रैबिट्स का एक अजीब तमाशा हुआ था हमारे यहाँ। वो था भी ना कोरोना वायरस का जमाना, तो वो ओनर जो था वो कहता था नहीं, इससे कोरोना फैलता है
रैबिट
जी, रैबिट हला लेते हैं, ठीक है। आप ये मोहम्मद हादी भाई के घर जाए ना, तो आपको कभी रैबिट खाने को मिलेगा। अच्छा, इन लोग खाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो अमवास की प्लेग फैली ना, तो हाँ, तो उन्होंने हजरत मुआज बिन जबल जतांग को अपने बाद शाम की हुकूमत के लिए नामजद फरमाया, क्योंकि उनका इंतकाल बिल्कुल, उनको समझ गया कि बस अब तो मैंने नहीं बचना, तो उन्होंने अपना ये बना दिया था उनको। तो उस जमाने में ताउन इंतहाई तेज रफ्तारी से फैल रहा था, तो इस मौके पर हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को सुनाया, एक हदीस सुनाई कि लोगों, मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि तुम लोग शाम की तरफ हिजरत करोगे, ठीक है। हिजरत करने का यहाँ पे मुराद क्या है कि जिहाद के लिए तुम लोग शाम मूव हो जाओगे, ठीक है। वो तुम्हारे हाथ पर फतह भी होगा, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया था, और हमने क्लास में पढ़ा भी था ना कि अबू उबैदा जब रोमन्स के साथ वो जंगे कौन सी हुई थी, यमामा,
यरमूक
यरमूक, ठीक है, तो उसमें एक नौजवान साहबी के मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैंने बस जाना है, मुझे इजाजत दी है, मैं अभी अटैक करना चाहता हूँ, ठीक है, आप मुझे इजाजत दिए। अबू उबैदा ने फरमाया कि ठीक है भाई, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, और जाहिर है मैंने शहीद ही हो जाना है, उसके बाद मैंने बच के तो नहीं आना, तो मैंने शहीद हो जाना है। अगर आपको नबी अलैहिस्सलाम को कोई मैसेज पहुंचवाना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा इतना यकीन, इतना यकीन, ठीक है, दिल में इखलास था ना, और नबी अलैहिस्सलाम के वादों पर यकीन, ठीक है। ये तकब्बुर नहीं था कि नहीं मैं तो इतना बड़ा, मैं तो अभी जाके मिलूंगा नबी, तकब्बुर की वजह से उन्होंने बात नहीं कही थी, ठीक है, ईमान और यकीन की वजह से कही थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम मेरा सलाम देना, और उनसे कहना कि आपने जो हमसे वादे किए थे ना, वो वादे हमने पूरे होते हुए देख लिए, ठीक है। तो वो उसी वादे वाली हदीस का ये जिक्र कर रहे हैं कि आप सदन से मैंने ये सुना था कि तुम लोग शाम की तरफ हिजरत करोगे, वो तुम्हारे हाथ पर फतह भी होगा, और वहां एक ऐसी बीमारी जाहिर होगी जो फोड़े या घुटली की तरह से होगी, ठीक है, यानी जब इसका जो होता है ना, तो फिर एक क्या कहते हैं ट्यूमर, लेकिन गिल्टी कहते हैं वैसे, अंग्रेजी में भी गिल्टी कहते हैं, उर्दू में भी इसको गिल्टी कहते हैं, ठीक है। तो वो ना आपके स्किन में कहीं ना कहीं निकल आती है ना गिल्टी, ठीक है, वो, लेकिन वो कभी ऐसा होता है कि वो बिनाइन होती, बिनाइन कहते हैं कि वो कैंसरस नहीं होती, और कभी जो है ना वो फिर कैंसरस होती है, तो फिर वो आपको मार देती है, ठीक है, यानी वो फिर आपकी मौत का सबब बन जाती है, लेकिन अगर बिनाइन हो तो फिर वो मौत का सबब नहीं बनती। तो ये फोड़े या गिल्टी की तरह से, घुटली की तरह से ये बीमारी होगी, इसके जरिए अल्लाह ताला तुम्हें शहादत बख्शेंगे और तुम्हारे आमाल का तस्किया फरमाएंगे। ठीक है, तो मुआज़ बिन जबल ने यह हदीस सुनाई लोगों को और उसके बाद फिर फरमाने लगे कि अल्लाह की तरफ, ऐसे ना ऐसे ऊपर देख करके कहते हैं ना, या अल्लाह अगर मुआज़ ने नबी अलैहिस्सलाम से वाकई ये बात सुनी है ना, ठीक है, यानी एक बात का करने का अंदाज होता है, सुनी तो उन्होंने थी, लोगों को सुना रहे थे, तो ही वॉज नॉट इन डाउट अबाउट इट ना, लेकिन इस तरह से अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं कि अल्लाह अगर मुआज़ ने ना ये इरशाद रसूलुल्लाह सल्लम से सुना है तो उसे और उसके घर वालों को भी इस फजीलत से वाफिर हिस्सा अता फरमा, वाफिर हिस्सा अता फरमा, यानी इस ताउन में मुझे भी और मेरे फैमिली को भी। ये तो मौत की दुआ हो गई भाई, ये तो जायज नहीं है जी। ठीक है, ये मौत की दुआ नहीं थी, ये शहादत की दुआ थी। क्यों? हालांकि ताउन से जो है वो तो एक बंदा मर जाता है बीमारी की वजह से, तो मौत हो गई ना, तो आप बीमारी मांग रहे हैं गोया के अल्लाह ताला से, ये तो जायज नहीं है कि आप अल्लाह ताला से बीमारी की दुआ करें, नहीं, बल्कि ये नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इससे जो मरेगा वो शहीद होगा, तो अब इससे मरने की जो दुआ है ये मौत की दुआ नहीं कहलाएगी, ये शहादत की दुआ कहलाएगी। ठीक है, ये शहादत की दुआ मांग रहे थे, ये मौत की दुआ नहीं मांग रहे थे, ठीक है ना, और क्यों? क्योंकि यकीन था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना तो ये झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी दुआ फरमाई, चुनाचे ताउन उनके घर में भी दाखिल हो गया, हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का कोई फर्द उससे नहीं बचा। कैसे मुस्तजाब दावत थे ये लोग, अल्लाह से मांगते थे अल्लाह ताला पूरी करते थे, एक बंदा भी उनके घर का इससे नहीं बचा। चुनांचे हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु को ताउन की खुटली वो शहादत की उंगली में, ये शहादत की उंगली होती है, इसके अंदर निकली, आप सल्लल्लाहु उसे देखकर फरमाते थे कि अगर कोई इसके बदले में मुझे सुर्ख ऊंट भी दे ना, तो मैं वो भी लेना नहीं पसंद करूंगा कि मुझसे सुर्ख ऊंट ले लो और मुझे ये गुठली दे दो, मैं नहीं, मैं मुझे सुर्ख ऊंट नहीं चाहिए भाई। सुर्ख ऊंट की मिसाल आपको पता है ना, उस जमाने में गोया के हम रियाज वाले हैं तो हमें मर्सिडीज की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो छोटी गाड़ियां होती हैं, हम रियाज वाले हैं तो हमें डायरेक्ट रोल्स रॉयस की बात करनी, और कौन सी होती है भाई, ज्यादा महंगी गाड़ी का आप लोग बताएंगे, बेंटली है तो बेंटली ले लो मुझसे, और ना मुझे ये ताउन की गुठली दे दो, मैं नहीं दूंगा, मैं बेंटली नहीं लूंगा तुमसे। ठीक है, तो सुरखून जमाने की बेंटली और रोल्स रॉयस होते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तानियों के लिए है कि बीमर या बेंज वगैरह महंगी गाड़ियां होती है, यहाँ पे तो हम बड़ी बात करें। ठीक है, तो ऐसे लोगों का ईमान और यकीन था। हजरत मौआज़ को ताउन में मुब्तला देख कर एक साहब रोने लगे, हजरत मौआज़ ने पूछा कि क्यों रोते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मुझे आपके जरिए से कोई दुनियावी दौलत मिली थी और अब आप चले जाएंगे तो मुझे कौन वो दौलत देगा, बल्कि मैं उस इल्म पर रो रहा हूं तो आपसे मैं सीखा करता था। ठीक है, तो मौजूदा ने अजीब जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कि तुम इल्म को भी नहीं रो, ठीक है, इल्म को भी मत रो कि मैं चला जाऊंगा तुम्हें इल्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस इलाके में पैदा हुए थे ना, तो वहां पर कोई इल्म नहीं था, कोई इल्म सिखाने वाला था ही नहीं, अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फरमा दिया। ठीक है, तो तुम्हें भी अल्लाह ताला इल्म अता फरमाएंगे, मेरे जाने से इल्म सिलसिला खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर आगे ये भी मशवरा दे दिया कि मेरे मरने के बाद चार अफराद के पास इल्म तलाश करना, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन, अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन और अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे जिबालुल इल्म अभी भी मौजूद हैं जो कि फिका का और हलाल हराम का इल्म जानते हैं, तुम इनके पास जाना, इनसे इल्म हासिल करना, बहर कैफ उनकी दुआ कबूल हुई और इसी ताउन में 18 हिजरी में ही आपने वफात पाई, जबकि आपकी उम्र कितनी थी, 33-34 ईयर्स, 33-34 साल, बस इतनी कम उम्र के अंदर जबरदान ऐसे जो है ना दुनिया से रुखसत हुए। इनकी एक बहुत रिलेटेड एक हदीस मैंने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले ही, मौलाना तारिक जमीन साहब से सुनी हुई थी, बल्कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने मौजूदान को ऐसे फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने जुबान निकाली बाहर, ऐसे पकड़ा, तारिक जमील साहब ने ना उन्होंने बाकायदा करके दिखाया था, ऐसे पकड़ा और कहा कि इससे बचो, ठीक है, इसके नुकसान से बचो, इसके खतरे से बचो, तो मुआजरतन समझ गए कि आपसे हम क्या फरमाना चाह रहे हैं ना, ये नहीं कि इस जमीन इसको तुम चबा लोगे तो तुम्हें तकलीफ हो, ये नहीं, बल्कि इस जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं ना इससे तुम बचो। तो मुआजरतन ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम बोलते हैं अल्लाह ताला क्या हमसे उसका भी हिसाब लेंगे? तो नबी ने फरमाया कि एक अरबी का मुहावरा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से ना कि जैसे कि तुम्हारी माँ तुमको रोए, है ना, कैसी बातें कर रहे हो माँ, तुम्हें इतनी बात की समझ नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जहन्नुम में जाएंगे, इस जुबान की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग जहन्नुम में जाएंगे। ठीक है, वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, कोई लफ्ज यहां से बाहर नहीं निकलता सिवाय इसके कि फरिश्ते जो है ना वो उसको लिख लेते हैं अपने पास। तो जुबान से बोलते हुए या मैसेजेस टाइप करते हुए और किसी को सेंड करने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या भेज रहे हैं लोग। ठीक है, हम किसी से छुपाएंगे, अल्लाह से नहीं छुपा सकते, अल्लाह ताला को पता भी है, और फिर अल्लाह ताला हमें अगर रुसवा करने के ऊपर आ जाए तो अल्लाह ताला फिर दूसरों को भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसने ये काम किया है। बहुत आसानी से चीजें लीक आउट कर देते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह ताला को कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, हम समझते हैं कि हम तो चोरी छुपे अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, और दोस्तों को हम डराते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया ना तो तुम मेरी दोस्ती से महरूम हो जाओगे। अल्लाह ताला भी हमें डराता है कि अगर तुमने इस तरह की हरकत करी ना तुम मेरी दोस्ती से महरूम हो जाओगे। और दोस्ती से महरूम होने का मतलब क्या होता है भाई, जल्दी से कोई बताए? दुश्मन बन जाओगे। दोस्ती से महरूम होने का मतलब क्या होता है? अब तुम दुश्मन, अब तुम मेरे दुश्मन। ठीक है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? थोड़ी सी हंसी के लिए, थोड़े से मजाक के लिए, थोड़ी सी दिल की, क्या हम अल्लाह की दुश्मनी बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। ठीक है भाई, बाकी हमारा काम है आपको बता देना जो हमने अपने पड़ोसी से सुना पढ़ा, बाकी आपका काम है उसको मानना और उस पर अमल करना। ला इकराह फिर दीन, हम आपको जोर जबरदस्ती करके इसके ऊपर अमल नहीं करवा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
Recording stopped.